यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 9 अक्टूबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को। सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की खातिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में संसाधन निवेश बहुत जरूरी। हर 16 सेकंड में होता है एक मृत बच्चे का जन्म, स्टिल बर्थ को रोकने के लिए प्रयासों की पुकार। कोविड-19 के कारण ऑनलाइन खरीदारी में हुए बड़े बदलाव, यही चलन रहने की संभावना। और कोविड-19 अपडेट के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव यानी विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। ये संगठन दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जीवन रक्षक खाद्य सहायता मुहैया कराता है, अक्सर बेहद खतरनाक और दुर्लभ हालात में। नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष बैरिट रीस एंडरसन ने कहा कि यूएन खाद्य एजेंसी WFP को भुखमरी का सामना करने, संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति के लिए हालात बेहतर बनाने और युद्धों व संघर्षों में भुखमरी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने से रोकने के उसके प्रयासों को पहचान व मान्यता देते हुए शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया भर में सबसे विशाल मानवीय सहायता संगठन है। साल 2019 में इस संगठन ने 88 देशों में लगभग 9 करोड़ 70 लाख लोगों की मदद की थी। यूएन खाद्य एजेंसी के प्रयास मुख्यतः आपात सहायता, राहत और पुनर्वास, विकास सहायता और विशेष अभियानों पर केंद्रित हैं। नोबेल पुरस्कार समिति ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के कामकाज की सराहना करते हुए समुदायों की खाद्य जरूरतें पूरी करके उनके अंदर मजबूती, सहन क्षमता और टिकाऊपन बढ़ाने में एजेंसी की भूमिका को रेखांकित किया। समिति ने कहा कि कोविड-19 संकट ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा में भी इजाफा किया है और एक साल के भीतर लगभग 26.5 करोड़ लोगों के सामने भूखे रहने की स्थिति पैदा हो सकती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने नोबेल पुरस्कार जीतने पर विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को बधाई देते हुए इसे खाद्य असुरक्षा के अग्रिम मोर्चों पर दुनिया की पहली मुस्तैद एजेंसी करार दिया।
I am delighted by the decision of the Nobel Committee to award this year's Nobel Peace Prize to the United Nations World Food Program. The World Food Program is the world's first responder on the front lines of food insecurity.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि मैं इस वर्ष का शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम WFP को दिए जाने के नोबेल समिति के फैसले पर बहुत प्रसन्न हूँ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP खाद्य असुरक्षा के हालात में मोर्चों पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली एजेंसी है। बहुतायत वाली इस दुनिया में ये देखना कितना हृदय विदारक है कि लाखों लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। लाखों अन्य लोग अब कोविड-19 महामारी के कारण अकाल जैसे हालात के कगार पर हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करने वाली महिलाएं और पुरुष संघर्षों के सताए और तबाह हुए लोगों, आपदाओं के कारण तकलीफों में घिरे लोगों और अपनी अगली खाद्य खुराक के बारे में भी अनिश्चित बच्चों व परिवारों तक जीवनदायी सहायता पहुंचाने के लिए खतरों का सामना करते हैं और अक्सर बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बीजली ने नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा होने के बाद कहा कि नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति की घोषणा ने दुनिया के उन लगभग 69 करोड़ लोगों को वैश्विक नज़र में ला दिया है जो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP से पहले भी संयुक्त राष्ट्र की अनेक एजेंसियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुके हैं। इस संबंध में और ज़्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पता है news.un.org/hi। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसस ने कहा है कि वैसे तो सभी देश कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाना होगा कि ये एक असमान ढंग से फैली हुई महामारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके कारण हुई मौतों के 70% से ज़्यादा मामले महज 10 देशों में हुए हैं और एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक आबादी का करीब 10% हिस्सा अब तक इससे संक्रमित हो चुका है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने इस साल के अंत तक कोरोना वायरस वैक्सीन आने की उम्मीद भी जाहिर की है। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने संगठन के कार्यकारी बोर्ड के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि अब तक कुल जितने मामलों और मौतों की पुष्टि हुई है उनमें 70% से ज्यादा मामले 10 देशों में सामने आए हैं। लगभग 50% मामलों की पुष्टि महज 3 देशों में हुई है। कोरोना वायरस के अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा मामलों का पता लग चुका है और 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष के अंत तक COVID-19 के लिए एक वैक्सीन आ सकती है।
We have to invest in new technology and that's why we launched the ACT Accelerator. We will need vaccines and there is hope that by the end of this year we may have a vaccine.
हमें नई टेक्नोलॉजी में भी निवेश करना होगा और इसलिए हमने ACT Accelerator पहल की शुरुआत की है। हमें वैक्सीनों की जरूरत होगी और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमारे पास एक वैक्सीन होगी, ऐसी हमें आशा है। महानिदेशक गेब्रियसिस के मुताबिक सभी देशों ने COVID-19 पर समान रूप से जवाबी कार्रवाई नहीं की है और न ही सभी देश इससे समान रूप से प्रभावित हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्रों में मामलों और मृतकों की संख्या बढ़ रही है, वहीं अफ्रीका और पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में हालात अपेक्षाकृत बेहतर हैं। ये स्पष्ट है कि दुनिया की अधिकांश आबादी के सामने इस वायरस से संक्रमित होने का जोखिम अब भी है। यूएन एजेंसी में आपात मामलों के निदेशक डॉक्टर माइकल रायन ने बताया कि महामारी अपना रूप बदल रही है लेकिन संक्रमणों पर काबू पाने और जीवन बचाने के लिए औजार भी उपलब्ध हैं। मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट और व्यापक रणनीतियों, एक रूपता भरे संदेशों और सशक्त और सक्षम जनसमूहों के जरिए हालात को बदल पाना और वायरस पर काबू पाना संभव है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि COVID-19 महामारी ने दिखा दिया है कि स्वास्थ्य प्रणालियां काफी नहीं हैं और कमजोर बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं होना कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं कि कोरोना वायरस 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और उसकी लगभग 30 गुना ज्यादा संख्या को संक्रमित करने का कारक बना है। यूएन प्रमुख ने गुरुवार को एक मंत्रिस्तरीय बैठक को दिए अपने वीडियो संदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरत से बहुत कम संसाधन निवेश होने की निराशाजनक तस्वीर की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज न केवल COVID-19 महामारी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है बल्कि ये स्वास्थ्य संबंधी तमाम टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति को तेज करेगी। COVID-19 ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को पहले से कहीं ज्यादा तात्कालिक व अहम बना दिया है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि हम असाधारण पहल ACT एक्सेलरेटर के लिए भी वित्तीय योगदान का आह्वान करते हैं जिसका मकसद हर किसी को हर स्थान पर COVID-19 की वैक्सीन, परीक्षण व उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम को एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई के रूप में देखा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चे का जन्म यानी स्टिल बर्थ होता है, जिसका मतलब है कि साल भर में लगभग 20 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो इस दुनिया में आने के बाद अपनी जिंदगी की पहली सांस शुरू ही नहीं कर पाते। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग ने संयुक्त रूप से तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मृत जन्म के लगभग 84% मामले निम्न व मध्यम आय वाले देशों में होते हैं। अपनी तरह के पहले इस संयुक्त वैश्विक अनुमान में ये भी ध्यान दिलाया गया है कि मृत जन्म उच्च आमदनी वाले देशों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है, जहाँ माँ का शिक्षा स्तर असमानता का एक प्रमुख कारण है। जातीय अल्पसंख्यकों को गुणवत्ता वाली पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का भी अभाव हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 महामारी के कारण मृत जन के मामलों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल द्वारा तैयार इस रिपोर्ट के लिए जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में 50% तक की कमी हो गई है, जिसके कारण 117 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 12 महीनों के दौरान मृत प्रसव के लगभग 2 लाख अतिरिक्त मामले हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मिलने वाली अपर्याप्त व खराब स्वास्थ्य देखभाल, जच्चा बच्चा सेवाओं के अभाव और कमजोर नर्सिंग व दाइयों की कम संख्या होने जैसे कारण जिम्मेदार हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने 73% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान पैदा कर दिया है, जिनका सर्वेक्षण किया गया। संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभाव की ओर ध्यान दिलाते हुए इन सेवाओं के लिए जल्द से जल्द धन मुहैया कराने की तात्कालिकता पर भी जोर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सर्वेक्षण के नतीजे सोमवार को जारी करते हुए ये भी कहा कि महामारी ने बुनियादी सेवाओं के लिए धन की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ा दी है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहनॉम गेब्रेयेसस ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसे समय में व्यवधान पैदा कर दिया है जब इन सेवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने विश्व नेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि महामारी के दौरान और उसके बाद के समय में जीवन रक्षक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में और ज़्यादा संसाधन निवेश करने के लिए निर्णायक व त्वरित कार्रवाई करनी होगी। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य लोगों के पूर्ण स्वास्थ्य व अच्छे रहन सहन के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शोक दशा, बिछड़ाव, आमदनी का खत्म होना और भय के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और मौजूदा परिस्थितियां ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 12 वर्ष तक की लड़कियों का जबरन या धोखे से विवाह ऐसे लोगों के साथ कराया जा रहा है जो यौन संबंधों और घरेलू कार्यों के लिए उनका शोषण करते हैं। मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC की एक नई रिपोर्ट में जबरन विवाह और मानव तस्करी के बीच संबंध की पड़ताल की गई है, जिसके मामलों की वास्तविक संख्या पूरी तरह सामने नहीं आ पाती। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
UN एजेंसी द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट में मानव तस्करी और जबरन विवाह कराए जाने के बीच आपसी संबंध को दर्शाया गया है। साथ ही सरकारों व प्रशासनिक एजेंसियों को इस समस्या से निपटने के लिए उपायों का भी विवरण दिया गया है। UNODC कार्यालय में मानव तस्करी विभाग में अधिकारी और लेखक सिल्के एल्बर्ट ने बताया कि यह ऐसी पहली रिपोर्ट है जिसमें इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के नजरिए से देखा गया है जिनके निर्वहन की जिम्मेदारी देशों पर है। इस अध्ययन में एक वर्ष की अवधि में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 9 देशों कनाडा, जर्मनी, जॉर्डन, किर्गिस्तान, मलावी, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और वियतनाम में शोध कार्य किया गया। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों ने उन वकीलों, सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और पुलिस अधिकारियों समेत करीब 150 लोगों से बातचीत भी की जो मानव तस्करी के पीड़ितों के संपर्क में आते हैं। UN एजेंसी की शोध अधिकारी तेजल जेसरानी ने बताया कि वैसे तो विवाह के उद्देश्य से तस्करी विश्व भर में होती है, लेकिन जिस तरह से यह अपराध विभिन्न देशों में किया जाता है वो विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक आर्थिक कारणों पर निर्भर करता है।
उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में हुआ एक नया सर्वेक्षण दर्शाता है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 ने ऑनलाइन खरीदारी के रूप को हमेशा के लिए बदल दिया है और ये रुझान बरकरार रहने की संभावना है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD और साझीदार संगठनों द्वारा 9 देशों में 3,500 से ज़्यादा उपभोक्ताओं पर आधारित इस सर्वेक्षण में ये तस्वीर उभरी है। ज़्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कोविड-19 एंड ई कॉमर्स नामक इस सर्वेक्षण में पड़ताल की गई है कि महामारी के कारण ई कॉमर्स और डिजिटल माध्यमों ने उपभोक्ताओं के ऑनलाइन व्यवहार को किस तरह बदला है। ये सर्वेक्षण ब्राजील, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया गणराज्य, रूस, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और तुर्की में किया गया। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले आधे से ज्यादा लोग महामारी के बाद भी बार बार ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं और खबरों, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और डिजिटल मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के उपभोक्ताओं में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए रुख में सबसे बड़ा बदलाव आया है। सर्वेक्षण बताता है कि अधिकांश उत्पादों की श्रेणियों में ऑनलाइन खरीदारी में 6-10% का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा सूचना व संचार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बागवानी औजार, शिक्षा, फर्नीचर और सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रति उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी पर किए जाने वाले औसत मासिक खर्च में गिरावट आई है। उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में उपभोक्ताओं ने बड़ा खर्च फिलहाल टाल दिया है। साथ ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में लोग बेहद जरूरी उत्पाद संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पर्यटन और यात्रा सेक्टरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जहां उपभोक्ताओं द्वारा औसत ऑनलाइन खर्च 75% तक लुढ़क गया है। कोविड-19 के दौरान देशों में ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ोतरी के स्तर में भिन्नताएं हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि चीन और तुर्की में दर्ज की गई है, जबकि स्विट्जरलैंड और जर्मनी में ये सबसे कम है, जहां ई कॉमर्स पहले से ही लोगों के जीवन का हिस्सा है। सर्वेक्षण दर्शाता है कि ऑनलाइन गतिविधियों में महामारी के दौरान आया बदलाव कोविड-19 के गुजर जाने के बाद भी जारी रहने की संभावना है।
संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों और विशेष राजनीतिक मिशनों में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती एक वीडियो श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें जगह बनाने वाली महिलाओं में भारत की एक पुलिस अधिकारी रागिनी कुमारी भी हैं, जो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की मूल्यांकन टीम लीडर हैं। शांति ही मेरा मिशन है नामक ये अभियान 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद महिलाओं की सार्थक भागीदारी और कार्य को बढ़ावा देना और शांति स्थापना व विशेष राजनीतिक मिशनों में उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। रागिनी कुमारी की कहानी पर एक संक्षिप्त नज़र, रिपोर्ट अंशु शर्मा।
मेरा नाम रागिनी कुमारी है। मैं 6 अप्रैल 2019 को दक्षिण सूडान में शांति मिशन में शामिल हुई थी।
मूलतः भारत की एक पुलिस अधिकारी और इस समय दक्षिण सूडान में तैनात दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन 19 की मूल्यांकन टीम लीडर रागिनी कुमारी ने विभिन्न देशों की 9 अन्य महिलाओं समेत उस वीडियो श्रृंखला में जगह बनाई है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति ही मेरा मिशन है नामक अभियान के तहत जारी किया गया है। 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया गया। भारतीय पुलिस अधिकारी रागिनी कुमारी बताती हैं कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक के रूप में तैनाती उनके लिए बहुत गर्व की बात है।
संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल होना मेरा सपना था और यह मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। सौभाग्य से मेरे पति भी मिशन में शामिल थे, इसीलिए उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया।
दक्षिण सूडान में तैनात 19 की मूल्यांकन टीम लीडर रागिनी कुमारी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के इस अभियान का मकसद है महिलाओं की सार्थक भागीदारी और कार्य को बढ़ावा देना व शांति स्थापना और विशेष राजनैतिक मिशनों में उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। रागिनी कुमारी ने शांति मिशन के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा,
इन अ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कंट्री और इन अ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन, द
देशों व क्षेत्रों में संघर्ष के बाद सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं और बच्चे होते हैं। एक महिला अधिकारी के सामने एक पीड़ित ज्यादा आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। मुझे जो प्रतिक्रिया मिली उससे स्पष्ट था कि खास तौर पर उन लोगों के लिए यह वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव था जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है, जिनके लिए आप उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। दरअसल हम ही उनकी आशा के स्रोत हैं।
दक्षिण सूडान में तैनात 19 की मूल्यांकन टीम लीडर रागिनी कुमारी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र की कोशिश है कि अधिक से अधिक महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र मिशन से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे न केवल शांति रक्षा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े बल्कि विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो।
रागिनी कुमारी की ये कहानी वीडियो में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम आपको याद दिला दें कि आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।